समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अगर फैसले लिए हैं सही लिए हैं तो वक्त जरूर लगेगा, पर फैसले अच्छे साबित अवश्य होंगे। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तवा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी स्पेशल एंड यू कैन से फ्राइडे एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड मुकेश, जब फैसले लेते हैं तब किसी को नहीं लगता है कि ये सही है कि गलत, सब सही सोच के ही फैसले लेते हैं।
बिल्कुल सही।
तो वो सिर्फ परिणाम ही बताता है कि वो सही साबित हुए या गलत, बट अगर गलत भी हुए तो यू शुड लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन आफ्टर लर्निंग फ्रॉम देम। तो जिंदगी में बस हम दुआ ही कर सकते कि जो फैसले लें वो ठीक साबित हो। एंड यस, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन टुडेज शो, जिसमें हम लोग लाते हैं अ मिक्स ऑफ न्यूज स्टोरीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन आवर मेट्रो न्यूज सेक्शन वी विल सी व्हाट आर द स्टोरीज कमिंग इन फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज, मेट्रो सिटीज, और ऑफ कोर्स द लास्ट सेक्शन इन विच वी रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज टुडे और देयर बर्थडेज टुडे। And of course, that special segment in which we'll remember the events that marked, this day. क्या कुछ हुआ था खास इतिहास के पन्नों में, देखेंगे वो सब भी। But first, let's start with the headlines.
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन के अलावा अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। महोत्सव में 250 से अधिक शिल्पकार 34 GI टैग वाली वस्तुओं सहित अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण ग्रामीण हाट होगा। इसमें इस क्षेत्र के 320 किसान और कारीगरों की उपज और कला का प्रदर्शन किया जाएगा।
The Center and the Asian Development Bank, ADB, have signed a $50 million loan agreement for climate-adaptive water harvesting project in Meghalaya. The loan agreement for the climate-adaptive community-based water harvesting project was signed yesterday by Joint Secretary in Department of Economic Affairs, Juhi Mukherjee, and Country Director of ADB's India Resident Mission, Mia Oka. The project will support the construction of 532 small water storage facilities across 12 districts. These facilities will incorporate climate-resilient designs to capture and manage heavy rainfall and flash floods during the monsoon season. The stored water shall improve water security during the dry season. Under the project, 3,000 hectares of command area will be developed to provide reliable irrigation areas for farmers. It will also establish 50 weather stations for gathering and monitoring of climate data and micro-irrigation systems in Garo, Jaintia and Khasi regions. The ADB will help strengthen the capacity of the Meghalaya State Watershed and Wasteland Development Agency and the Soil and Water Conservation Department in water management.
भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति के निर्णयों की घोषणा करेगा। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में गठित समिति मौद्रिक नीति पर बुधवार से विचार विमर्श कर रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार रेपो दर को यथावत बनाए रखने की संभावना है, लेकिन नकद आरक्षी अनुपात CRR को भी समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।
महापरिनिर्वाण दिवस इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे मार्किंग द 69th डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉ BR आम्बेडकर, the chief architect of the Indian Constitution. On this solemn day, the nation pays homage to Baba Saheb Ambedkar by reflecting on his teachings and commitment to building a just and inclusive society. Several events are being organized all over the country to highlight the contributions of Dr. Ambedkar in nation building. Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Deputy Chairperson of Rajya Sabha Harivansh, other members of Parliament and several other dignitaries will offer floral tributes to the Chief Architect of the Indian Constitution at Prerna Sthal in Parliament House Complex in New Delhi.
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत क्विज चैलेंज में भाग लेने की तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर थी। क्विज में भाग लेने के लिए युवा माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करा सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए खुली है। विजेता प्रतिभागी अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करेंगे।
The 12th Puducherry International Documentary and Short Film Festival is set to begin in the Union Territory today. The three-day festival will showcase 35 short films and documentaries from across the world. The event is being organized by the Department of Electronic Media and Mass Communications at Pondicherry University in collaboration with the National Film Development Corporation of India, Tamil Nadu Progressive Writers Artists Association and Puducherry Film Forum. Renowned Indian documentary filmmaker Anand Patwardhan will inaugurate the festival at the Jawaharlal Nehru Auditorium in the Pondicherry University campus in Kalapet. The opening day will feature a special screening and discussion of Patwardhan's critically acclaimed film, Vasudhaiva Kutumbakam. 10 other films are also lined up for today's screening. Tomorrow, filmmaker Shivakumar Mohanan will lead a masterclass on checklist for independent cinema. Prominent personalities such as editor B. Lenin, filmmaker V. Pakirasamy, Tamil Nadu Progressive Writers and Artists Association General Secretary Adhavan Dithachaya, writer S. Tamilaselvan and other artists will also participate in the festival.
आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के समाचार बताएं सारा।
वेल मुकेश, लेट्स स्टार्ट विद शहर चेन्नई। As part of Swachhta Pakhwada 2024 activities, the ESI medical camp for contract employees was organized at CVRDE yesterday in association with ESIC MCH Chennai. The camp aimed to provide essential basic medical checkups, consultations and healthcare services to support the health and well-being of CVRDE contract employees who are covered under the Employees State Insurance or ESI scheme. Around 150 contractual employees benefited through the ESI medical camp and necessary medicines were provided for the participants. The Central Council for Research in Siddha, CCRS, under the Ministry of Ayush, Government of India, organized a two-day training program on best practices and enforcement of Drugs and Cosmetics Act 1940, Rules 1945 and Drugs and Magic Remedies Act 1954 in association with All India Institute of Ayurveda, National Pharmacovigilance Coordination Center, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, State Licensing Authority for Indian Medicine, Government of Tamil Nadu yesterday, and the camp will also be today as well. The two-day training program will cover diverse topics including current trends in pharmacovigilance, drug inspectors' roles and responsibilities, regulatory compliance and enforcement, quality assurance, labeling requirements and licensing procedures for ASU drug manufacturers. Moving on to Bengaluru, the Metro Rail Service Provider in Bengaluru has announced commencement of rail services to suit candidates appearing for the KPSC exam on the 8th of December, that is Sunday. On this day, the Metro services will commence at 5:30 a.m. instead of the usual 7 a.m. BMRCL has issued a release that Metro services will begin early so that candidates can reach their exam centres using Metro rail services on time. Karnataka Public Service Commission is conducting Panchayat Development Officer examination on that day. The first train will leave Madhavara, Silk Institute, Challaghata and Whitefield stations at 5:30 a.m. Between 5:30 a.m. and 7 a.m, the trains will run once every half an hour. Thereafter, train services will run as usual. Moving on to Hyderabad, Telangana Chief Minister Revanth Reddy formally launched a special mobile app, Indirama Illu or Indirama Houses, to select the Indirama Housing Scheme beneficiaries in a transparent manner at a function in Hyderabad yesterday. The app will have Telugu content for the benefit of rural residents. The Chief Minister said the app will provide Indirama Houses to deserving and simplified procedures for the convenience of the beneficiaries to ensure that no errors creep in the implementation of the housing scheme. He said administrative sanction had been given to 4.5 lakh houses in the first year and 3,500 houses have been allotted to each assembly constituency in the state. He said priority would be given to the poorest of the poor in the allotment of houses, followed by Dalits, tribals, agricultural laborers, sanitation workers, people with the differently abled people, and transgenders. So, well, Mukesh, this was the buzz that I had from these three metros of Chennai, Bengaluru, and Hyderabad. What is the latest you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के समाचारों की। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद कल राज्य सचिवालय पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहले फैसले में मुख्यमंत्री सहायता कोष से पुणे के एक मरीज को 5 लाख रूपये की सहायता राशि जारी की। ये आर्थिक सहायता चंद्रकांत शंकर कुरहाड़े को उनकी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण उपचार के लिए प्रदान की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद थे। डॉ बी आर अम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर आज दादर के चैत्य भूमि पहुंचने वाली भीड़ को संभालने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने व्यापक तैयारियां की हैं। नगर पालिका ने 1 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में अस्थायी पंडाल और आश्रय स्थल बनाए हैं। स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए एक नियंत्रण कक्ष, एम्बुलेंस, पोर्टेबल शौचालय, पेयजल स्टेशन और चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। यात्रियों की जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मध्य रेलवे ने अपने टिकट जांच कर्मचारियों को हैंड हेल्ड स्पीकर वितरित करके मुंबई मंडल में एक नई पहल शुरू की है। इन पोर्टेबल स्पीकर को ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ को यात्रियों को सीधे महत्वपूर्ण सुरक्षा और आवश्यक जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। और मुंबई एशियाटिक सोसाइटी का अनुसंधान केंद्र भारत के पारसियों की व्यापारिक सूझबूझ और कारीगरी पर एक चर्चा आयोजित करेगा। पारसी आर्टिस्ट्री सैलून शीर्षक से कपड़ा इतिहासकार टिनार नुशियान द्वारा की जाने वाली चर्चा दर्शकों को पारिवारिक विरासत और चीनी भारतीय वस्त्रों गारो सूरत के जरी के काम और नवसारी के दाना नी तोरण के काम के बारे में जानकारी देगी। ये चर्चा कल शाम 5 बजे एशियाटिक सोसाइटी के दरबार हॉल में आयोजित की जाएगी। और अब दिल्ली के समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली में वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्रवाई योजना के चौथे चरण ग्रैफ 4 के प्रतिबंधों को दूसरे चरण में बदलने की अनुमति दे दी है। ये निर्णय वायु गुणवत्ता में हाल में हुए सुधार के बाद लिया गया है। दिल्ली में 30 नवंबर से औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे चल रहा है। न्यायालय ने आयोग को एहतियात के तौर पर ग्रैप के तीसरे चरण के अंतर्गत कुछ उपायों को शामिल करने पर विचार करने का परामर्श दिया है। साहित्य अकादमी के पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। इस मेले के दौरान साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन राजधानी के रविन्द्र भवन परिसर में होगा। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनयिक नवतेज सरना करेंगे। इस मेले में 40 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। मेले में पुस्तक प्रेमियों के लिए प्रवेश सवेरे 11 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। ये पुस्तक मेला इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रखरखाव कर्मियों ने कल रिकॉर्ड समय में मोतीनगर और कीर्तिनगर के बीच प्रभावित ब्लू लाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बहाल कर दिया। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि मोतीनगर और कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन के बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा कथित तौर पर केबल को क्षतिग्रस्त करने के बाद ब्लू मेट्रो लाइन प्रभावित हुई थी। डीएमआरसी ने बताया कि मरम्मत कार्य करने के लिए 20 कर्मियों की विशेष टीम का गठन किया गया और प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया। कुल 140 मीटर केबल क्षतिग्रस्त हो गई थी और इन कर्मियों ने केवल 30 मिनट के रिकॉर्ड समय में मरम्मत का काम पूरा कर लिया। सारा देश दुनिया के समाचार हो गए और मेट्रो की खबरें भी हो गई। अब बारी आती है खेल जगत के समाचारों की। तो खेल जगत की हलचल लेकर स्टूडियो पहुंच चुकी हमारी सहयोगी फरहत नाज। फरहत, बताएं आज खेल खबरों की शुरुआत कहां से करेंगे?
जी मुकेश, आज खेल खबरों की शुरुआत क्रिकेट से करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। दिन रात ये मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। पर्थ में पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। अगले वर्ष जून में लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अभी 5 टीम के बीच स्पर्धा है। भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हराना होगा। वहीं शारजा में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के एक दिवसीय क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले की बात की जाए तो आज ही दुबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी। वहीं भारत ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डेंग लेजेंग के बीच 9वीं बाजी भी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ी 54 सालों के बाद बाजी ड्रॉ कराने पर सहमत हुए। अब दोनों खिलाड़ियों के 4.5 अंक हो गए हैं, जबकि चैंपियनशिप जीतने के लिए 7.5 अंक की जरूरत है। आज विश्राम का दिन है, 10वीं बाजी कल खेली जाएगी। अगर दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर रहते हैं तो फास्ट टाइम कंट्रोल के अंतर्गत मुकाबला खेला जाएगा और विजेता घोषित किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप की तो आज से बहरीन के मनामा में शुरू हो रही है। ये चैंपियनशिप में 3 भारतीय महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो भारत का कोई खिलाड़ी भाग नहीं ले रहा है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी इसमें भाग नहीं ले रही हैं। चानू की अनुपस्थिति में ज्ञानेश्वरी यादव महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता बिंदिया रानी देवी महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती रखेंगी, जबकि दिति मोनी सोनोवाल 64 किलोग्राम में भाग लेंगी। और अब बात राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की तो आज से बेंगलुरु में ये शुरू हो रही है। इसमें शीर्ष भारतीय सीनियर पहलवान भाग लेंगे। 28 पहलवानों के साथ हरियाणा चैंपियनशिप में दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। इस प्रतियोगिता में कुल 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। इसमें देश भर से 700 से खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रमुख पहलवानों में मणिपुर की वाई मीनाक्षी देवी हैं, जिन्होंने इसी वर्ष एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। कैडेट एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली हरियाणा की ज्योति एक अन्य प्रबल दावेदार है। पुरुषों की बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार विजेता और हरियाणा के एशियाई खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले सुनील डाबरपुरा और पिछले वर्ष कनाडा में विश्व पुलिस खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सनी जैसे दिग्गज पहलवान इसमें भाग ले रहे हैं। खेल खबरों में अभी इतना ही।
धन्यवाद फरहत। और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा के साथ। और कार्यक्रम में सायरा, वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का हाल जान ले।
वेल, दिल्ली का मौसम तो बेहाल करना शुरू कर चुका है, isn't it? But nonetheless, yes, of course.
बिल्कुल। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम तो साफ रहे, लेकिन सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। सवेरे के समय हल्का कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई चलते हैं तो मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये बात हुई सायरा दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मौसम की। आप बताएं कि चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहने वाला मौसम।
Well, Chennai will have a partly cloudy sky today, Mukesh. Minimum temperature was 25, while maximum will be around 34 degrees Celsius. Bengaluru might also expect somewhat similar weather conditions with cloudy sky and light rain. The minimum temperature in Bengaluru was 20 degrees Celsius. Maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad will also have light rain or drizzle today, along with having a generally cloudy sky throughout the day. And temperature in Hyderabad will hover between 21 and 29 degrees Celsius.
और समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास का हिस्सा बन गई। आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन वर्ष 1917 में फिनलैंड ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
एंड जस्ट 5 years बिफोर इन द ईयर 1912 द बस्ट ऑफ नेफर्टिटी वॉज फाउंड ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन एट द मिडिल इजिप्शियन साइट ऑफ तेल एल अमारना। द एक्सकवेशन कैंपेन वॉज लेड बाय हिस्टोरियन लुडविग बोकहार्ड। In the year 1917, Finland declared, as you had mentioned, its independence from the Russian Empire, and on this day, 1921, Ireland also gained independence from the United Kingdom when representatives of the two states signed the Anglo-Irish Treaty.
1926 की बात करें तो आज ही के दिन फिराक गोरखपुरी अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक समय में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक बंदी बनाए गए थे। 1946 की बात करें तो होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी।
Yes, and 1967, the first human-to-human heart transplant in the United States and the second in the world was performed by Adrian Kantrowitz at Maimonides Medical Center in Brooklyn, New York.
1978 की बात करें तो आज ही के दिन यूरोपीय देश स्पेन में संविधान को अंगीकार किया गया था और 1997 में जापान के क्योटो में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आरंभ हुआ था। जबकि 1998 की बात करें तो आज ही के दिन बैंकॉक में 13वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। इटली को हराकर स्वीडन लगातार दूसरी बार डेविस कप का विजेता भी आज ही के दिन बना था और 2002 में आज ही के दिन स्पेन के कार्लोस मोया को एटीपी यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था।
And on this day in the year 2006, NASA released images taken by the Mars Global Surveyor that indicated that water still flows occasionally on the surface of planet Mars.
और अंत में 2008 में आज ही के दिन भारत और चीन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड कर्नाटक के बेलगांव में आरंभ हुआ था। और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले किसे याद करेंगे?
इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, बिकॉज टुडे इज महापरिनिर्वाण दिवस एंड वी आर रिमेम्बरिंग द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर। नॉट जस्ट एन इकोनॉमिस्ट ज्यूरिस्ट बट ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर एंड पोलिटिकल लीडर पार एक्सलॉन्स हु चेयर्ड द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द डिबेट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ सर बेनेगौल नरसिंह राव। Ambedkar served as Law and Justice Minister in the first cabinet of the independent Indian government, and he later converted to Buddhism and inspired the Dalit Buddhist movement after renouncing Hinduism. And after graduating from Elphinstone College, University of Bombay, he studied economics at Columbia University and the London School of Economics, receiving doctorates in 1927 and 1923, and was also among a handful of Indian students to have done so at either institution in the 1920s.
बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच नाम से महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित की थी। और डॉक्टर अम्बेडकर अंतिम समय तक दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। सन 1927 में उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी लाने के लिए अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने 1937 में बम्बई उच्च न्यायालय में यह मुकदमा भी जीता था। और अब याद करते हैं परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक कर्नल होशियार सिंह को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें यह सम्मान 1971 में मिला था। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने भारत के दो बहादुर सिपाहियों को परमवीर चक्र दिया था। एक तो पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन्होंने अपने प्राण गंवाकर सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता का सम्मान प्राप्त किया। दूसरे मेजर होशियार सिंह, जिन्होंने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया और दुश्मन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की दूसरी ओर शकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जरवाल का मोर्चा फतह किया था। इस युद्ध को भारत ने कई मोर्चों पर लड़ा था, जिसमें एक मोर्चे पर मेजर होशियार सिंह ने कमान संभाली। भारत की सैन्य दक्षता और शौर्य के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और अंततः पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा समूचे पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया, जो बांग्लादेश कहलाया। इस युद्ध में भारत ने न केवल विजय हासिल की वरन पूर्वी पाकिस्तान के निरीह निहत्ते नागरिकों को बर्बरता का शिकार होने से भी बचाया।
Today we are remembering a very fine actress of yesteryears on her death anniversary, and sometimes, primarily she was of the black and white era of Hindi cinema. She is most known for her roles in classics such as Anarkali, Ghoongat, and Taj Mahal, and we are talking about none other than Beena Rai. Yes, she won Filmfare Award for Best Actress for her performance in the film Ghoongat. And Beena Rai's real name was Krishna Sareen, and she came from Punjab. She was born in 1931, and her family was uprooted from Lahore during the communal frenzy and then resettled in Uttar Pradesh. और हम सब जानते हैं कि बीना राय ने बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं मुकेश, isn't it?
बिल्कुल बिल्कुल। विवाह के बाद बीना राय ने उनके पति के साथ मिलकर पीएन फिल्म्स के बैनर में शगुफा, जो कि 1953 में प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद गोलकुंडा का कैदी 1954 में प्रदर्शित हुई और समंदर 1957 में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों का निर्माण किया, साथ ही पति पत्नी की जोड़ी ने इन फिल्मों में अभिनय भी किया था।
That's right. In fact, आपको अगर याद हो कि उस जमाने में ज्यादातर जो एक्ट्रेसेस होती थी, they mostly came from the families of the wives, but respectable family से बहुत कम औरतें आती थी। But बीना राय actually convinced her parents, और कह सकते हैं कि वो भूख हड़ताल पे चली गई थी, and she said that आप मुझे फिल्मों में काम करने की इजाजत दे। And of course, we know that she came, she went on to become one of the very fine actresses of Hindi cinema.
और बीना राय ने उस समय अपना मुकाम हासिल किया था, अपना परचम लहराया था जब 50 का दशक था, और वो दशक था श्यामा, नंदा, वैजंती माला, नूतन, आशा पारिक, माला सिन्हा जैसी और मीना कुमारी, वहीदा रहमान तथा अमिता जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां जो थी उनका उस समय समय चल रहा था, और उन्होंने इस दशक में बिना बतौर नायिका करियर की शुरुआत की थी और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे चलकर लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था।
Let's listen to one of the songs.
बिल्कुल।
Even though she appeared with her husband Prem Nath in many films, but her films with leading man Pradeep Kumar remain her best remembered performances, where she played the title role in Anarkali, Taj Mahal and Ghoonghat, for which she won the Filmfare Award for Best Actress. And in the 1970s, her son Prem Krishan became an actor and had one big hit, Dulhan Wohi Jo Piya Man Bhai. But he couldn't sustain the momentum, so he turned producer. And Beena Rai stopped acting in films many years ago, claiming that women after a certain age don't get good roles. She also talks fondly of her husband Prem Nath, who had died. And we remember her performance in so many films, as Anarkali being the best hit. Or ek aur gana hai Mukesh Beena Rai ka. Let's listen to it.
Bilkul. और हिंदी सिनेमा में खलनायक और चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाने वाले राम मोहन की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने मिर्जा गालिब, तारा, शतरंज, संसार, बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली है और महाभारत जैसे 15 टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय भी किया। राममोहन को फिल्म जग्गू से कामयाबी मिली। इसके बाद अगले कुछ सालों में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु, पेंशनर, होटल, लाले यमन, देवर भाभी, मिस 58, नाइट क्लब, राज सिंहासन जैसी कई फिल्मों में काम किया।
Today we are also remembering Aziz Mia Qawwal on his death anniversary, a traditional Qawwal famous for singing ghazals in his own style of Qawwali, and is considered one of the greatest Qawwals in South Asia. He holds the record for singing the longest commercially released Qawwali, Hashr Ke Roz Ye Poochunga, which runs slightly over 150 minutes. So unke baare mein baat karne se zyada behtar hoga ki hum unki
Qawwali suni jaye.
Yes.
और तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने वाली भारतीय एक्ट्रेस और फिल्ममेकर निस्साकारा सावित्री की आज जयंती है, और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, तो उनका एक पहले गाना सुन लिया जाए।
Today is also the birthday of a very accomplished and one of my favorite filmmakers. Yes, it's Shekhar Kapoor's birthday, and we from All India Radio wish him very much on his, best wishes for his birthday. He's made some memorable films, Masoom, Mr. India, Bandit Queen. And since we have very less time on our hands, Mukesh, to Masoom picture ka bada khubsurat gana hai, Do Naina.
Oh
तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सारा मुश्तबा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी FM गोल्ड।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, द हिंद न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार।